प्रिय भक्त जनों, क्या आप जानते हैं कि शनि देव नवग्रह देवों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा राहु केतु सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको इनकी एक पवित्र कथा सुनाता हूं। शनि देव की क्रूर दृष्टि जिस पर भी पड़ जाती है वे नष्ट हो जाता है। इनकी दृष्टि कम से कम 2.25 घड़ी या अधिक से अधिक 7.5 साल तक रहती है। शनि देव के पिता सूर्य देव हैं और इनकी माता का नाम छाया है। यद्यपि सूर्य देव और शनि देव में पिता और पुत्र का नाता है, परंतु फिर भी इन दोनों ग्रह देवों में प्रेम संबंध नहीं हो पाता। इस पावन पवित्र कथा में आप सभी को बताने जा रहा हूं कि शनि देव इतने क्रूर दृष्टि वाले क्यों हुए। इस शनि देव की कथा को सुनने से पापों का विनाश हो जाता है और भक्तजन भव से पार हो जाते हैं। आइए सुनिए ये पावन पवित्र शनि देव की कथा। भगवान शनि की आज तुम्हें हम कथा सुनाते हैं, तुमको बतलाते हैं देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जो शनि देव की कथा सुने वो दुख नहीं पाते हैं, भव से तर जाते हैं देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, शनि देव की पवित्र कथा सुनने वाले प्रेमी भक्त जनों, एक बार 9 के 9 ग्रह एक जगह एकत्रित हुए। सब अपने आप को बड़ा बड़ा बताने लगे। सूर्य देव कहते हैं कि आप सब ग्रह मेरी परिक्रमा करते हैं, इसलिए मैं आप सब में बड़ा हूं, मेरी पूजा होनी चाहिए। चंद्रमा बोले, मैं सब ग्रहों में सुंदर हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। बृहस्पति कहने लगे, मैं सबका गुरु हूं, मेरा स्थान सबसे ऊंचा है। इस तरह मंगल, बुध, राहु, केतु तथा शनि देव भी अपने अपने को बड़ा बताने लगे। परंतु इस विवाद का कोई हल नहीं निकला। सब कहने लगे, चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं, वहीं इस बात का निर्णय करेंगे। एक समय नवग्रह में छिड़ गया भारी एक विवाद, एक जगह एकत्र हुए वो लेकर अपना राज, अपना अपना करके दावा बोले मैं हूँ महान, अपने अपने आप करते सारे ही अभिमान। सूर्य देव कहे मैं बड़ा देता जग को प्रकाश, कहे चंद्रमा मैं बड़ा मनमोहक हूँ मैं खास, बृहस्पति कहे मैं सबका गुरु मेरा है ऊंचा नाम, शुक्र शनि मंगल बुध भी बोले हम हैं सुख धाम। दूर ये शंका करने इंद्र के पास में जाते हैं, अपना प्रश्न बताते हैं देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे भक्त जनों, नवग्रह देवों को अपने पास आता देख इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो गए। अपना सौभाग्य समझ अपने आप को धन्य मानते हुए वो सिंहासन से उतरकर उन सभी को अपने दरबार में स्वयं लेकर आते हैं। आदर सहित प्रणाम करके आसन पर बिठाते हैं। इंद्रदेव मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि आज का समय कितना महान है, जो 9 के 9 ग्रह मेरे दरबार में विराजमान हैं और मैं इनके साक्षात दर्शन पा रहा हूं। परंतु मन में एक शंका भी थी कि अवश्य कोई खास बात है, क्यों ना मैं ही पूछकर अपनी शंका दूर कर लूं। इंद्रदेव ने पूछा, हे ग्रह देवों, आप किस कारणवश यहां पधारे हैं, कृपया मुझे बताइए। अगर मेरे वश में कुछ हुआ तो मैं अवश्य ही आपका कार्य करूंगा। इंद्रदेव की भक्ति देखकर नवग्रह बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ क्षण पश्चात सूर्यदेव बोले,
देख के नवग्रह को आते सुरपति जी हर्षाए, उतर सिंहासन से नीचे सबको लेने आए। इंद्रदेव ने करके नमन आसन पर बिठलाया, मेरा सौभाग्य है आज तुम्हारा दर्शन जो पाया। कैसे हुआ है आना आपका आज ये मेरे पास, हे नवग्रह देवो बतलाओ बात है क्या वो खास। सोच में हूँ मैं तुम्हें देख मेरी शंका दूर करो, बोले सुरपति इंद्रदेव तुम मेरी दुविधा हरो। इतना कहकर इंद्रदेव जी शीश झुकाते हैं, देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
सूर्यदेव इंद्रदेव को सारा विवाद समझाते हैं और कहते हैं कि हे सुरपति, आप हमारी शंका दूर कीजिए। हम नवग्रहों में कौन सबसे महान, शक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ और अधिक पूजनीय है, यही प्रश्न लेकर हम आपके द्वार पे आए हैं। आप सब देवताओं में सबसे ज्ञानी ध्यानी हैं, आप कृपा करके हमें बताइए। आपका निर्णय हम सभी को मान्य होगा, आप निसंकोच होकर हमें बताएं। सोम मंगल बुध बड़े हैं या गुरु बृहस्पति शुक्र या शनि सूर्य बड़े हैं। नवग्रहों का ये विवाद सुनकर इंद्रदेव सोच में पड़ गए और बोले, हे ग्रह देवो, आपने मुझे किस उलझन में डाल दिया, इसका निर्णय मैं नहीं दे सकता। आप मृत्यु लोक में जाइए, वहां राजा विक्रमादित्य बड़े बुद्धिमान और न्यायकारी हैं, वो ही इसका निर्णय देंगे, आप सभी वहां जाइए। नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं।
सुनो सुनो हे इंद्रदेव, हम तुम्हें बताते हैं, आपके द्वारा ही हम सब एक निर्णय चाहते हैं। हम नवग्रह में कौन बड़ा है और है कौन महान, पूजा किसकी ज्यादा हो और ऊंचा हो स्थान। सूर्य बड़ा या चंद्र बड़ा या बड़ा है शनिवार, मंगल बुध या सोम बड़ा है या है बृहस्पतिवार। देकर निर्णय अपना हमारी शंका दूर करो, तुम सुरपति हो ज्ञानी ध्यानी कौन बड़ा है कहो। सुन के उनकी बात इंद्र भी सोच न पाते हैं, सोच न पाते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
जय जय श्री शनि महाराज, प्रभु पूरण की जोतार। जय जय श्री शनि महाराज, प्रभु पूरण की जोतार।
प्रिय भक्तों, राजा विक्रमादित्य हाथ जोड़कर नवग्रहों को प्रणाम कर राजमहल ले जाते हैं। सम्मान सहित आसन पर बिठाकर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए बोले, हे नवग्रह देवो, मेरे लिए क्या आदेश है कहिए। सब ग्रह देव बोले, हे राजन, आप बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं। आपके न्याय के चर्चे पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। यही सोचकर हम आपके पास न्याय के लिए आए हैं। आप ही हमारी शंका दूर कर सकते हैं। हे राजन, हम नवग्रहों में विवाद छिड़ा है कि हम में कौन सबसे श्रेष्ठ तथा शक्तिमान और अधिक पूजनीय है। ये वचन सुनकर राजा बड़ी सोच विचार में पड़ गए। काफी समय सोचने के बाद राजा को एक युक्ति सूझी। उसी के अनुसार इस बात का निर्णय हो सकता है।
क्या आज्ञा है मेरे लिए है देव बतलाओ, क्या मैं आपकी सेवा करूं ये मुझको समझाओ। अपने प्राण भी देकर मैं तो फर्ज निभाऊंगा, आपकी सेवा में ही मैं दिन रात बिताऊंगा। बोले सूरदेव, हे राजन, करना है एक न्याय। नवग्रह में है कौन बड़ा ये हमको दो बतला। न्यायकारी हो तुम तो जग में है तुम्हारा नाम, इसलिए आए मृत्यु लोक में लेकर के ये काम। राजा विक्रमादित्य सुनकर चकरा जाते हैं, युक्ति लगाते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
जय जय श्री शनि महाराज, प्रभु पूरण की जोतार। जय जय श्री शनि महाराज, प्रभु पूरण की जोतार।
भक्तों, बहुत समय तक सोचने के बाद जब राजा को एक उपाय सूझा, उन्होंने एक कारीगर को बुलाकर ये आदेश दिया कि वो अलग अलग धातुओं जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि के 9 सिंहासन तैयार करें। उन 9 सिंहासनों को महल के अंदर बहुत अच्छे ढंग से सजा दिया, परंतु इसका भेद राजा के सिवाय और कोई नहीं जानता था। सब कार्य संपन्न होने के पश्चात राजा सभी नवग्रहों को आदर सहित उन सिंहासनों के पास ले जाते हैं जो अलग अलग धातुओं से सुसज्जित थे।
बहुत ही सोच विचार किया तो सूझा एक उपाय, मन ही मन में निर्णय लिया यही होगा सच्चा न्याय। राजा को एक सुंदर सा अद्भुत विचार आया, चुपके से एक कारीगर को था पास बुलवाया। मनमोहक और सजीले 9 सिंहासन बनवाए, राजा ने हर धातु से थे वो सारे सजवाए, नौ के नौ सिंहासन अपने महल में लगवाए। राजा का ये भेद कोई भी जान नहीं पाए, आदर के साथ नवग्रहों को राजा लेकर आते हैं, अपने साथ ले आते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की कथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
राजा विक्रमादित्य सब ग्रह देवों को आदर सहित नौ सिंहासनों की ओर इशारा करके आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं। सारे नव ग्रह देव अपनी अपनी पसंद के आसनों पर विराजमान हो जाते हैं। सूर्य देव सोने के सिंहासन पर विराज गए, चंद्रमा चांदी वाले पर, तथा जिस ग्रह देव को जिस धातु का सिंहासन पसंद आया वो उसी पर विराजमान हो गए। शनि देव जी लोहे से सजे सिंहासन पर बैठ गए। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे, अपने किए गए प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। उन सभी के मनोभाव समझकर राजा मन ही मन प्रसन्न होते हुए बोले, हे नवग्रह देवो, मैंने जो निर्णय लिया है वो आपको सुनाता हूं।
बोले राजा, ग्रह देवो सब आसन ग्रहण करो, अपनी अपनी पसंद का तुम स्वयं ही चयन करो। सोने का सिंहासन सूर्य देव ने चुन लिया, अपनी पसंद का आसन हर ग्रह देव ने ग्रहण किया। पीतल तांबा चांदी पर ग्रह देव गए थे बिरा, लेकिन लोहे के सिंहासन पर बैठे शनि महाराज। अपना अपना आसन पा सब ग्रह हुए प्रसन्न, महाराजा विक्रमादित्य भी खुश हो गए मन ही मन। अब राजा नवग्रह देवों को निर्णय सुनाते हैं, निर्णय सुनाते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
प्रिय भक्तों, राजा विक्रमादित्य नवग्रह देवों से बोले, मैंने जो आपके प्रश्न का निर्णय लिया है वो आपको सुनाता हूं, परंतु यदि आप मेरे न्याय से संतुष्ट न हो तो कृपया मुझे क्षमा दान दें। देवो, धातु के अनुसार बने हर सिंहासन को ध्यान में रखते हुए और उन पर विराजमान सभी नवग्रह देवों का सम्मान करते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि सोना सब धातुओं में महान है और लोहा सबसे छोटा, इसलिए सूर्य देव सबसे बड़े और पूजनीय हुए तथा शनि देव सबसे छोटे हुए। कर्मशय अनुसार धातुओं की योग्यता से प्रेरित होकर मैंने ये निर्णय लिया है। ये सुनकर आठों ग्रह देव राजा की जय जयकार करने लगे।
सुन लो ग्रह देव, जो मैंने किया इंसान, यदि हो गई कोई भूल तो मुझको कर देना तुम माँ। जिसका जैसा सिंहासन है उतना ऊंचा नाम, उतना ही वो महान, जग में पावन उसका धाम। सब धातु में जैसे सोना होता बड़ा महान, उससे नीचा सब धातु का होता है स्थान। लोहा माना जाता छोटा सब धातु के समान, जो जैसे सिंहासन बैठा ऐसा उसका मान। शनि देव को छोटा सूर्य को बड़ा बताते हैं, सूर्य को बड़ा बताते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
राजा विक्रमादित्य का यह निर्णय सुनकर शनिदेव क्रोध में भर जाते हैं, उनके नेत्रों से अग्नि बरसने लगती है, उनके क्रोध की सीमा न रही और वे झल्ला कर बोले, राजन मुझे छोटा बताकर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य भोगना होगा, मेरी क्रूर दृष्टि से तू बच नहीं पाएगा। मेरी क्रूर दृष्टि से तो मेरे पिता सूर्य देव भी नहीं बच पाए, राम रावण दशरथ सभी को मैंने दंड दिया, तू क्या चीज है। बड़े बड़े पराक्रमी योगी तपस्वी राजा महाराजा वीर योद्धा मेरी परछाई से डरते हैं, मैंने बड़े बड़े सत्यवादी दान वीरों को दर दर फिरा दिया है, राजन तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा।
सुनकर शनि देव ये निर्णय गुस्से में आए, मेरी नजर से कोई बचाना कहकर चिल्लाए, छोटा कह राजन मुझको मेरे मन को झिंझोड़ा, आग लगाई है तन में अपराध नहीं थोड़ा, मेरी नजर से बचेगा ना तू राजन फिर थोड़ा, अपने कहर से मैंने अपने पिता को ना छोड़ा, कितने राजा महाराजा को बन बन फिरवाया, वनवास को भेजा राम को सीता को भी हरवाया, बड़े बड़े पराक्रमी भी मुझसे घबराते हैं, मुझसे घबराते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
हे भक्तो, शनि देव राजा पर क्रोधित होकर बोले, हे राजा मेरे क्रोध से तो देवों के देव महादेव भी नहीं बच पाए, उनको भी मेरी क्रूर दृष्टि के कारण सवा दो घड़ी के लिए हाथी की योनि में रहना पड़ा था, गणपति को भी मेरे ही शाप के कारण अपने एक दांत से हाथ धोना पड़ा था, जिसने भी मेरा मान नहीं किया उसे मैंने सुख से जीने नहीं दिया, और जो मेरा भक्त हुआ उस पर कभी दुख की छाया नहीं आने दी, परंतु राजा तूने मेरा अपमान किया है, ये तेरा अपराध है, इसका दंड तो तुझे भोगना ही होगा। शनि देव मन ही मन ये विचार कर अपनी माया दिखाते हैं।
महादेव भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। सवा दो घड़ी के लिए थे वो भी हाथी बन आए। गणपति ने भी मेरे शाप का था ये फल पाया। दांत तुड़ाया था अपना जब मेरा पड़ा साया। जिसने किया विरोध मेरा ना सुख उसने पाया। जिसने मेरा नाम लिया ना दुख उसने पाया। राजा तू भी नहीं बचेगा देखना तू परिणाम। एक दिन तुझको लेना होगा मेरा ही बसना। मन ही मन में शनि देव जी विधि बनाते हैं। मन में विधि बनाते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।
शनि महाराज प्रभु पूरण की जोकार। श्री शनि महाराज प्रभु पूरण की जोकार।
भक्तों, शनि देव राजा विक्रमादित्य को माया के जाल में फंसाने के लिए एक घोड़ों के व्यापारी बन जाते हैं। एक माया रूपी बड़ा ही सुंदर मनमोहक उड़ने वाले घोड़े को लेकर उज्जैन नगर में आते हैं। जब नगरवासियों ने इस घोड़े को देखा तो इसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। ये चर्चा जब राजा तक पहुंची तो उस घोड़े को देखने की राजा की भी इच्छा हुई। राजा ने व्यापारी को घोड़ा लेकर दरबार में बुलाया। व्यापारी उस घोड़े को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। राजा को वो घोड़ा बहुत ही आकर्षक लगा।
सुनो रे भक्तों, शनि देव ने माया रची न्यारी। उज्जैन नगर में वो आए बन घोड़ा व्यापारी। उड़ना घोड़ा एक बनाया था मायाधारी। जिसे देख के नगरी के सब चकित नर नारी। इस घोड़े की पूरे नगर में चर्चा हुई भारी। राजा के कानों तक पहुंची ये बातें सारी। मैं भी देखूंगा घोड़े को ये मन में आया। राजा ने व्यापारी को दरबार में बुलवाया। घोड़ा लेकर व्यापारी दरबार में आते हैं। राजा को दिखाते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।
शनि महाराज प्रभु पूरण की जोकार। शनि महाराज प्रभु पूरण की जोकार।
प्रिय भक्तों, राजा को वह घोड़ा बहुत ही पसंद आया। राजा ने व्यापारी को उसका मुंह मांगा मूल्य देकर घोड़े को खरीद लिया। व्यापारी बने शनि देव मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए और बड़बड़ाने लगे कि राजा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन बड़ा है। उधर राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ घोड़े पर सवार हुए। घोड़ा राजा को लेकर आकाश में उड़ गया। शनि देव ने अपने प्रभाव से राजा की बुद्धि को हर लिया और स्वयं घोड़े की लगाम बनकर घोड़े को हवा में बहुत तेज गति से लेकर उड़ चले।
राजा बोले, व्यापारी से घोड़ा हमें पसंद। दाम बताओ करके सवारी हम लेंगे आनंद। लो अपनी मुंह मांगी कीमत घोड़ा मेरा हुआ। राजा की ये बातें सुन व्यापारी प्रसन्न हुआ। मार फलारा घोड़े पर जब राजा सवार हुए, उड़ा गगन में घोड़ा राजा नगर से बाहर हुए। शनि देव ने राजा की बुद्धि को हर लिया। मजा चखाऊं राजा को ये मन में धर लिया। शनि देव खुद घोड़े की लगाम हो जाते हैं, घोड़े को उड़ाते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
जनों, राजा घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ते हुए सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए आनंद ले रहे थे। घोड़ा बहुत गति से उड़ता चला जा रहा था। राजा के रोकने से भी वो घोड़ा नहीं रुक रहा था। हजारों कोस दूर पहुंचकर घोड़े ने राजा को एक निर्जन जंगल में छोड़ दिया और स्वयं कहीं लुप्त हो गया। राजा भूख प्यास के मारे इधर उधर भटकने लगे, सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। इतने में शनि देव एक ग्वाला बनकर राजा के पास आते हैं। राजा को पानी पिलाकर उनका परिचय पूछते हैं, परंतु राजा अपना भेद छुपाते हुए अपना नाम धामा बताते हैं।
राजा भय मगन करके यूं घोड़े की सवारी, देखते जाते दृश्य वो सुंदर सब दुनियादारी। पता चला ना कितनी दूर आ गए अपने घर से, कोस हजारों दूर हुए वो अपने नगर से। जंगल में घोड़े ने जा राजा को छोड़ दिया। पलक झपकते ही वो घोड़ा अंतर ध्यान हुआ। भूख प्यास में तड़पे राजा भटके इधर उधर, दुखी हुए थे राजा कोई दिखता नहीं नगर। अपने आप ही शनि देव ग्वाला बन जाते हैं और पानी पिलाते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
राजा बोले, हे भाई ग्वाले, यहां कोई नगर हो तो बताओ, जहां पर मेहनत मजदूरी करके मैं अपना पेट पाल सकूं और जीवन व्यतीत कर सकूं। ग्वाला बोला, हे भाई धामा, यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक नगरी है जिसका नाम चंपावत है। आओ, मेरे साथ आओ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां मेरा मित्र एक सेठ है, वह बड़ा धनवान और दयालु है, वह तुम्हें अवश्य ही काम दे देगा। ये सुनकर राजा को खुशी हुई। ग्वाला धामा को लेकर सेठ के पास आता है, उसका परिचय देकर उसे नौकरी देने के लिए कहता है। सेठ धामा को नौकरी पर रख लेता है। धामा सेठ की दुकान पर काम करने लगता है।
बोले राजा नगर कोई हो मुझको बतलाओ, चला जाऊंगा मैं तो वहीं तुम मार्ग दिखलाओ। वहां पे जाके किसी के घर कर लूंगा मजदूरी, पेट पाल कर ए भाई मैं जिंदगी कर पूरी। चंपावत नगरी है आगे चलो हमारे साथ, मजदूरी मिल जाएगी नहीं घबराने की बात। एक सेठ है मित्र हमारा देगा तुझको काम, बड़ा दयालु सेठ है वो घर उसका है सुख धाम। धामा और वो ग्वाला सेठ के पास में आते हैं, काम पे उसे लगाते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
राजा को सेठ के यहां काम करते हुए 2.5 वर्ष बीत जाते हैं। शनिदेव राजा पर एक नई चाल चलते हैं। एक दिन सेठ धामा के काम से खुश होकर उसे अपने घर खाने पर बुलाते हैं। धामा जहां बैठकर खाना खा रहा था वहीं सामने एक खूंटी पर 9 लक्खा हार टंगा था। जब धामा की नजर उस हार पर पड़ी तो देखा खूंटी उस हार को धीरे धीरे निगल रही थी। देखकर धामा बहुत ही हैरान हो गया। तभी सेठ उस हार को लेने वहां आए, खूंटी से हार गायब था। धामा के सिवा वहां और कोई भी नहीं आया था। सेठ धामा पर चोरी का इल्जाम लगाता है। धामा को नगर के सिपाही पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। धामा गिड़गिड़ा रहे हैं,
शनि देव ने फिर खेली थी एक नई ये चाल, नौकरी करते राजा को जब बीते 2.5 साल। राजा का सब काम देख कर सेठ वो हर्षाया, एक दिन खाने पर धामा को घर पे बुलवाया। खाना खाते धामा ने देखा एक चमत्कार, सामने खूंटी निकल रही थी 9 लक्खा एक हार। देखते देखते खूंटी पूरे हार को निगल गई, धामा की तो समझो जैसे जान ही निकल गई। चोरी का धामा पे सेठ इल्जाम लगाते हैं, पकड़ से निकले जाते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
धामा बने विक्रमादित्य सब नगरवासियों के सामने जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मैं चोर नहीं, परंतु उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। सिपाही उन्हें हथकड़ी डालकर राजा के दरबार में ले जाते हैं। राजा उनके अपराध को सुनकर उनके हाथ पैर कटवाने की सजा सुना देते हैं। जल्लाद हाथ पांव काटकर उन्हें नगर से बाहर शमशान के पास फेंक देते हैं। धामा पर तरस खाकर एक तेली उन्हें अपने घर ले जाता है। वहां उससे कोल्हू में जुता बैल हकवाता है। बड़ी मेहनत के बाद उसे खाना मिलता है। समय बीतता गया। सर्दी गर्मी के मौसम के बाद सावन का महीना आया। राजा के मन में भी खुशी की लहर सी उठी। मन में मल्हार गाने की इच्छा हुई। मल्हार गाने लगे, जिसे सुनकर राजकुमारी मंत्रमुग्ध हो जाती है।
चोर नहीं मैं, चोर नहीं, धामा चिल्लाते हैं, लगा हथकड़ी धामा को दरबार मिलाते हैं। चोरी का अपराध मान राजा ने न्याय किया, हाथ पांव कटवा धामा के बाहर फेंक दिया। नगर का एक तेली धामा को उठा के घर लाया, बिठा के पाठ पे कोल्हू के था बैल को हकवाया। सर्दी गर्मी बीती, हरियाला सावन आया, मन में उठी हिलौरे धामा का मन भर आया। राग मल्हार की मीठी मीठी तान वो गाते हैं, बड़े ही मुग्ध हो जाते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
प्रिय भक्तों, राजकुमारी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, क्या तुमने सुना कोई कितना अच्छा गा रहा है? इस सुरीली आवाज ने तो मेरे मन को हर लिया है। मैंने हृदय में इसी को पति मान लिया है। मैं शादी करूंगी तो उससे ही। तुम जाओ और पता लगाओ कि ये कौन है और कहाँ रहता है। नगर की हर गली हर चौक बाग बगीचे में जाकर ढूंढो। दासी ढूंढते ढूंढते उस तेली के घर पहुंचती है। देखती क्या है कि एक व्यक्ति जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं, वो कोल्हू की पाट पर बैठा गा रहा है। ये देखकर सखी को रोना आ गया। सारा वृतांत राजकुमारी को जाकर बताती है।
सुनो सखी, कितना अच्छा गाता है कोई मल्हार, झूठ नहीं है, मुझको तो हो गया है उससे प्यार। कोई भी हो मैं तो शादी इससे ही करूंगी, ठान लिया है मन में पति इसको ही वरूंगी। कौन है ये तुम पता लगाओ, ये तेरा है काम, कहाँ है रहता, जाओ सखी तुम ढूंढो नगर तमाम। सुनते सुनते सखी वो स्वर तेली घर आती है, देख के धामा की हालत वो चकरा जाती है। राजकुमारी से कहते नैना भर आते हैं, नैना भर आते हैं, देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
अपनी सखी से बात सुनकर राजकुमारी कहती है कि अब जो चाहे जैसा हो, मैंने उसे अपना पति मान लिया है। मैं शादी करूंगी तो उसी से। इस बात की भनक राजा और रानी को भी लग जाती है। वे राजकुमारी को बहुत समझाते हैं लेकिन राजकुमारी नहीं मानती और जिद पर अड़ जाती है। राजा को लाचार होकर राजकुमारी की शादी उस चौरंगे से करनी पड़ती है। राजा ने राजकुमारी को विदा किया। एक रात चौरंगे को स्वप्न में शनि देव दिखाई दिए और कहने लगे,
सुनो सखी, मैं शादी तो उससे ही रचाऊंगी, कैसा भी हो मैं जीवन संग उसके बिताऊंगी। जब जब इन बातों का पता राजा को चल गया, राजकुमारी को राजा ने बहुत ही समझाया। लेकिन राजकुमारी जीना चित से पट हुई, शादी करूंगी उससे ही बस जिद पे अड़ गई। बेटी की इस जिद से राजा हो गए थे लाचार। बुलवाया तेली को, कहा कर चौरंगे को तैयार। चौरंगा और राजकुमारी शादी रचाते हैं, बंधन में बंध जाते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
भक्तों, शनि देव ने राजा को स्वप्न में उनकी भूल का एहसास कराया। तभी राजा शनि देव के पैरों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। शनि देव राजा से प्रसन्न होकर उसे क्षमा कर देते हैं। उनके हाथ पांव भी पहले की भांति ठीक कर देते हैं। राजा अति प्रसन्न होकर शनि देव की जय जयकार करने लगते हैं और कहते हैं कि आप सबसे महान हैं, आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे सभी दुखों से मुक्त कर दिया, मेरा जीवन फिर से आबाद कर दिया। मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूंगा और पूजा करता रहूंगा।
मुझको छोटा कह के किया था राजा ने अपमान, मेरी शक्ति का अब तो तूने देख लिया परिणाम। राजा बोले, शनि देव मोह क्षमा कर दीजो दान, भूल हुई है मुझसे भगवान, तुम हो सबसे महान। भूलूंगा ना मैं तुमको, रखूंगा सदा ही याद, अपनी क्रूर दृष्टि से बस अब मुझे करो आजाद। शनि देव को आई दया, सुन राजा की फरियाद, पहले जैसे हो गए राजा और हुए आजाद। शनि देव के चरणों में फिर शीश झुकाते हैं, बड़ी ही खुशी मनाते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
राजा विक्रमादित्य का ये रूप देखकर व परिचय सुनकर चंपावत नगरी के राजा रानी व सभी नगरवासी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य शनि देव की कथा सुनाते हैं। उन सभी से विदा लेकर अपनी पत्नी के साथ उज्जैन नगरी में लौट आते हैं। सारी प्रजा उनकी जय जयकार करती है। राजा सारी प्रजा को बुलाकर शनिदेव की कथा सुनाते हैं और सारी प्रजा के साथ मिलकर शनिदेव की पूजा करते हैं। सारे नगरवासी शनिदेव की इस पावन कथा को सुनकर हर्षित हो जाते हैं और पापों से मुक्ति पाकर भव से पार हो जाते हैं।
उन पे दयालु होते शनि जी इनका ले जो नाम, सच्चे मन से जो कोई माने बनते बिगड़े काम। शनि देव की कथा सुने जो कटते पाप तमाम, इनकी पूजा करने वाले पाते हैं सुख धाम। सूर्य पुत्र ये नवग्रहों में माने जाते श्रेष्ठ, पल में भीख मंगा दे और ये पल में बना दे से। यम लोक में कर्मों का दंड देते हैं यमराज, मृत्यु लोक में पापों का दंड देते शनि महाराज। काला वस्त्र और तेल उड़द सब इन पे चढ़ाते हैं, तेल से स्नान कराते हैं। देवों के देव श्री शनि देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
प्रिय भक्तों, शनि देव उन पर बड़ी ही कृपा करते हैं जो उनका नाम लेते हैं। जो भक्त इन्हें सच्चे मन से ध्याते हैं उनके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। शनि देव की पावन पवित्र कथा सुनने से सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य पुत्र शनि देव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बिगड़े तो पल में भीख मंगा देते हैं, यदि प्रसन्न हो जाएं तो पल में सब खुशियां झोली में डाल देते हैं। ये मृत्यु लोक में प्राणियों को उनके बुरे कर्मों का, उनके पापों का दंड देने वाले न्याय अधिकारी हैं। इन्हें तेल, काला तिल, काला वस्त्र बहुत ही प्रिय है। शनिवार को सच्चे मन से इनकी पूजा भक्ति करनी चाहिए। ये कथा कहने में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो भक्तों मैं क्षमा प्रार्थी हूं।